सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। आज विश्व वसुधा दिवस है अर्थात अर्थ डे। धरती हमारी माँ है, बचपन से हमें यही पढ़ाया जाता रहा है। अपनी माँ को वसुधा को स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। 1970 में यूएन के द्वारा विश्व वसुधा दिवस को अपनाया गया ताकि हम इसके संरक्षण पर ध्यान दे सकें, इसे प्रदूषित न होने दें, क्योंकि आज हम हैं कल हमारी आने वाली संतति इसमें रहेगी, इसीलिए इसकी सुरक्षा करना, इसे श्रेयस्कर बनाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व बनता है। आज का ये दिवस सचमुच हमें याद दिलाता है कि वसुधा यदि हमें इतना कुछ दे रही है तो हमें भी तो वसुधा को बहुत कुछ देना चाहिए। एक बहुत सुंदर कविता हमारे पास आई हुई है, मैं वो सब आपको अर्पित करता हूं, उसके पश्चात आज की इस कड़ी की शुरुआत करेंगे। ये हमें मानसा ने भेजा है बेलगाम से। वो कहती हैं, अगर बचाना है हमें अपनी धरती को तो रखना होगा हमें इसे स्वच्छ, बनाना होगा सुंदर और स्वस्थ, करना होगा प्रदूषण मुक्त और रखना होगा जल से युक्त। जरूरत नहीं है किसी भी अभियान की, बस जरूरत है थोड़ी सी बुद्धि और ज्ञान की। हमारी छोटी सी कोशिश बदलाव ला सकती है, भविष्य के खतरों से हमें बचा सकती है। अगर ना फेंके हम इधर उधर कचरा, ना उत्सर्जित होने दें विषैली गैसें, ना काटे हरे भरे पेड़ तो भूमि प्रदूषण हो कैसे, ना खोदें हर कहीं गर्त, बस मान लें ये छोटी सी शर्त, तो हमारी पहल रंग लाएगी और हमारी धरती स्वर्ग बन जाएगी। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं मानसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वास्तव में इसी की आवश्यकता है, इसी जागरूकता की आवश्यकता है, इसीलिए आज के समाधान की इस कड़ी को हम अपनी वसुधा को अर्पित कर रहे हैं। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आदरणीय भ्राता जी के अभिनंदन के साथ। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
धरती हम सबकी माँ है, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से तो दूर, लेकिन इमोशनली हम सब इससे बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो आज के इस शुभ दिवस पर आप क्या कहेंगे?
बिल्कुल, इसको माँ कहा भारत में तो धरती माँ और इसकी पूजा होती आई है, क्योंकि ये धरती तो हमें सब कुछ देती आई है। चाहे हम पानी को ले लें, मिट्टी को ले लें, अन्न ले लें, सब कुछ तो हमें धरती माँ से ही मिलता है। तो जैसे माँ बच्चों की पालना करती है, धरती माँ सारे मनुष्य मात्र की पालना करती आई है, इसलिए वास्तव में हम इसके बहुत ऋणी हैं। और हमारा ये परम कर्तव्य है कि इसको हम स्वच्छ रखें, इस पर बोझ न डाल दें। हमारे भारतीय शास्त्रों में तो पहले से ही मान्यताएं चली आ रही हैं कि पाप के भार से जब धरती माँ दब जाती है, कराहने लगती है, तो भगवान को पुकारती है कि आओ मेरी सुरक्षा करो। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी माँ को ऐसी स्थिति में न पहुंचा दें वो कराहने लगे और पुकारने लगे और वो कहने लगे कि पाप का और बोझ जब मैं वहन नहीं कर सकती हूं। तो सचमुच मैं तो सोच रहा था कि यूएन में भी कैसे बुद्धिमान लोग बैठे हैं जिनके पास ये 70 में ये अवेयरनेस थी कि हम धरती को बचाने के लिए इसमें जो एनर्जी है, जो ये हमें अन्न और सब कुछ दे रही है, उसको पुनः एनर्जेटिक रखने के लिए किन किन चीजों का ध्यान दें। उन्होंने ये बहुत अभियान सुंदर चलाए, लेकिन उद्योग का होना भी जरूरी था, औद्योगिक क्रांति आई संसार में, भारत में तो बहुत बड़ी, ये कोई गलत नहीं थी, लेकिन करें क्या, ऐसी गैसेस तो उससे उत्पन्न होती हैं, उनका रूपांतरण अगर कर दिया जाए तो वो भी बहुत क्रिएटिव हो सकती हैं। धरती में बहुत सारी गंदगी जाती है, केमिकल से युक्त पानी जाता है, उससे धरती की स्वच्छता नष्ट होती है, पानी दूषित होता है, हेल्थ पर बुरा प्रभाव होता है, लेकिन करें क्या ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमें इंडस्ट्री भी चाहिए, उसके बिना हमारा विकास कैसे होगा, नौकरियां कैसे मिलेंगी लोगों को, प्रोडक्शन कैसे होगा, देश समृद्ध हुआ है इंडस्ट्रीज के बल से, लेकिन इसका समाधान भी आवश्यक है। तो अब तो स्वयं भगवान इसका समाधान सदा के लिए कर रहे हैं। आज के दिवस पर भी हम सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अर्थ डे, वसुधा दिवस सचमुच हम सबके लिए ऐसा सुंदर हो जाए कि हमारी वसुधा रियल में जो हमारी माँ है, फिर से इससे हमें प्यार और भरपूरता प्राप्त हो।
प्रताप जी, विशेष करके ये जो विषैले गैस हैं, जो इंडस्ट्रीज के द्वारा या वाहनों के द्वारा या अन्य बहुत सारे साधनों से जो हमारे पर्यावरण में जा रहे हैं, प्रकृति में जा रहे हैं, वायुमंडल में, इन्हीं के कारण ओजोन लेयर में भी छेद हो रहा है और साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जो सचमुच बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है। आपको क्या लगता है इनका क्या उपाय हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बैठकें लगातार होती रहती हैं लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, आपके विचार से क्या उपाय होना चाहिए?
कहीं ना कहीं मनुष्य का स्वार्थ एक निश्चित परिणाम पर लोगों को पहुंचने नहीं दे रहा है। अगर हम अपने मन को शुद्ध कर लें, अपने कर्तव्यों को पहचाने, और कहीं ना कहीं तो किसी को झुकना ही पड़ेगा, अमेरिका को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चाइना को झुकना पड़ेगा, लेकिन हर व्यक्ति का, हर देश का एक स्वार्थ होता है, वो उसका बलिदान नहीं करना चाहता, उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, उनकी बात भी अपनी ठीक होती है, अगर वो उन चीजों को छोड़ दे तो उनके विकास के बहुत सारे कार्य बंद हो जाए। लेकिन बहुत बुरी चीज है मानसिक प्रदूषण। अगर हम अपने मन को स्वच्छ कर लें, चारों ओर स्वच्छ वाइब्रेशन हम फैलाने लगे, इस बात पर हम आते हैं थोड़ा, तो ये बहुत सारी चीजें धीरे धीरे रुक सकती हैं।
बिल्कुल सत्य जी, इसी प्रकार से जैसे ये एक चीज है, आपने कहा चलिए हम उम्मीद तो रखते हैं कि सभी देश आपस में मिल बैठ करके इस बात को थोड़ा सा जरूर ध्यान दें, विचार करें, क्योंकि किसी एक देश की तो ये बात ही नहीं है, पूरी वसुधा की बात है, और यदि कहीं पे भी विनाशकारी प्रभाव शुरू होते हैं तो वो सारी वसुधा पे बहुत जल्दी फैल जाएंगे। ऐसी ही एक विशेष बात और बताया जी, बहुत तेजी से हम अपने जंगलों की कटाई विकास के नाम पे करते चले जा रहे हैं, जिस तेजी से उन्हें काट रहे हैं उस तेजी से हम वृक्ष तो लगा नहीं पा रहे हैं, और इससे जलवायु में जो परिवर्तन है देखने में आज आ रहा है, क्या इसका समाधान आप सोचते
हैं? समाधान तो लोग ये स्थूल रूप से कर रहे हैं कि पेड़ लगाओ, उनको बढ़ाओ, उनकी पालना पोषणा करो, ये सब भी बहुत हो रहा है, लेकिन कटाई इतनी ज्यादा हो गई उसको भी रोकना बहुत कठिन काम रहा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती गई, उनके मकान बनाने के लिए भी जगह चाहिए मनुष्य को, अभी खेती के लिए भी जगह चाहिए ज्यादा। मैं जानता हूं किसानों के पास पहले बाग होते थे, बड़े बड़े गार्डन्स होते थे आम के और फलों के, अब देखा उनसे इतनी आमदनी तो होती नहीं, तो लोगों ने उनको काट के अपना गन्ना या गेहूं या चावल उगाना शुरू कर दिया। यहां से शुरुआत हुई थी इन चीजों की, कि किसानों को उन चीजों से कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा था। हम जब छोटे थे तो चारों ओर हमें बाग दिखाई देते थे, गार्डन्स दिखाई देते थे, तेजी से वो कटे, हम भी सोचते थे ये 10 पेड़ क्यों काट दिए, तब तो अच्छा लगता था कि यहाँ अब गेहूं होने लगे हैं, लेकिन बाद में पता चला इससे तो बहुत नुकसान हो गया धरती को। तो इन सब के कारण तो बने, अब पृथ्वी पे जगह भी कम होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाग बगीचे उस तरह के रहे नहीं है। हालांकि अगर आप पहाड़ियों में जाएं तो हरियाली बहुत देखने को मिल जाती है, लेकिन जनसंख्या के कंपैरिजन में वो बहुत कम होती है, इसलिए ऑक्सीजन का भी की कमी होती जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही, और ये सब बातें हैं, कहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कहीं ओजोन में छिद्र होते जा रहे हैं, इस ओर तो संसार बढ़ता जा रहा है, और इसमें बड़े बड़े लोगों का ये कर्तव्य है, सरकारों का कर्तव्य है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मैं उस बात को अपने सभी दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा जो बहुत गहरी बात है। देखिए, मैं पहले तो एक छोटी सी बात कहूं, धरती मिट्टी है, मिट्टी में बहुत सारी शक्तियां हैं शरीर के रोगों को नष्ट कर देने की, मिट्टी के लेप से अनेक तरह के दर्द जो दवाइयों से दूर नहीं होते ठीक हो जाते। मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट नेचर क्योर को जानने के कारण कराए तो लोगों को टांगों में दर्द हो रहा था, 10-12 दिन मिट्टी के लेप करा दिए, अब तक टांग दर्द होते ही नहीं, घुटने दर्द हो रहे थे, कोहनियों में दर्द हो रहे थे, करा दिया वो खत्म ही हो गए।
तो बहुत बड़ी शक्ति
बहुत बड़ी शक्ति इस मिट्टी में है जिसके महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं। धरती में कितने संसाधन हैं आप जानते हैं, सारा कोयला, सारे केमिकल, सारे हीरे मोती रतन वहीं से तो निकल रहे हैं। बड़ी बड़ी चीजें हमारे धरती के गर्भ में छुपी हुई हैं। हम जो कुछ कर सकते हैं वो ये, और जो हम कर रहे हैं, हमारे राजयोगी लाखों लाखों लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं, इस धरती को और इस प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना। मैं ये बात बहुत बार कहता आया हूं, ये बात कहीं लिखी नहीं है लेकिन ये बात समझने की है, इस बात पर कहीं खोजे नहीं हुई, ये किताबों में नहीं आई, ये ग्रंथों में नहीं आई। प्रकृति की वास्तविक शक्ति पवित्रता है। अब वो पवित्रता प्रकृति में नहीं है, वो पवित्रता है मनुष्य के अंदर। हम जो कुछ सोचते हैं, हमारे विचार अगर शुद्ध होंगे तो वो पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, धरती में समाएंगे, वायुमंडल में समाएंगे, आकाश में समाएंगे, अग्नि उन्हें ग्रहण करेगी, जल उन्हें ग्रहण करेगा और ये चीजें शुद्ध होती जाएंगी। देखिए जल में भी तो एक संसार है ना, उसको दूषित करना माना एक उसके अंदर के संसार को नष्ट कर देना। और ये जो हमारी धरती है इस पे तो हम खड़े हैं, हमारे पैरों से भी वाइब्रेशंस निकलकर धरती में समाते जाते हैं। अगर हमारे पैर पाप कर्मों की ओर चल रहे हैं तो हमारे कदम कदम से निगेटिव एनर्जी धरती में फैल रही है। अगर हम प्योरिटी में हैं, अगर हम सदकर्म कर रहे हैं, अगर हमारे मन में अहिंसात्मक वृत्ति है, सबको सुख देने की भावना है, तो हमारे पैरों से पवित्र वाइब्रेशंस धरती में समाते जा रहे हैं। हम सब राजयोगी ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं धरती को पवित्र वाइब्रेशंस देने के, और ये वाइब्रेशंस बहुत बड़ा काम करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा उन सब राजयोगियों को जो इस धरती को और प्रकृति को फिर से पावन और सत्वप्रधान बनाना चाहते हैं, जो हमारी धरती को भरपूर कर देना चाहते हैं, ये धन धान्य से भी भरपूर हो, ये अन्न भी भरपूर दे, यहाँ का जल भी ऐसा हो जो अमृत का काम करे, पानी पीने से ही बीमारियां दूर हो जाएं, आज जानते हैं पानी पीने से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो इस धरती को रोज 10 मिनट योग के और पवित्रता के सुंदर वाइब्रेशंस देंगे। तो मैं एक विधि सबके समक्ष रख रहा हूँ।
दत्ता जी, ये केवल राजयोगी ही करेंगे या सभी ये कर सकते?
देखिए ये काम तो राजयोगियों का है और जो इसको करना चाहे उन्हें राजयोग कम से कम 3 दिन में तो सीख ही लेना चाहिए, कम से कम,
क्योंकि वसुधा से तो सभी को प्यार,
सबका प्यार है और सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये प्रकृति के सभी तत्व सृष्टि के आदि से और अंत तक हमारी पालना करते आए हैं। सोचो अगर धरती पानी न दे,
अन्न न दे,
अगर अन्न न दे, अगर हमें शुद्ध वायु न मिले तो मनुष्य जीवन का अस्तित्व कितने दिनों तक चलेगा। तो हम इनके आभारी हैं और सभी को ये ऋण उतारना ही पड़ेगा। जैसे माँ ने अपने बच्चों की बहुत पालना की हो तो बच्चों का कर्तव्य बनता है ना, माँ बूढ़ी हो गई उसकी पालना करे। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते हैं और सब कुछ उन्हें देते हैं, पालना करते हैं। हमारी ये धरती और ये प्रकृति भी तो बूढ़ी हो गई है ना, देते देते उसकी एनर्जी समाप्त हो गई है। अब हम बच्चों का कर्तव्य है हम पुनः उसे भरपूर करें, तो पवित्र वाइब्रेशंस देना, पवित्र कर्म करना, लेकिन इसके साथ में राजयोग की एक सुंदर विधि, और वो ये है कि हम अपने सामने ग्लोब इमर्ज करेंगे और फिर अभ्यास करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। दूसरा संकल्प है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। राजयोग करेंगे, परमात्मा शक्तियां अपने भरेंगे कुछ देर, और फिर अभ्यास करेंगे, मेरे सामने ग्लोब है, धरती का गोला है, और मेरे मस्तक से पवित्र किरणें, शक्तियों की किरणें, शक्तियों के वाइब्रेशंस निकलकर ग्लोब में जा रहे हैं। 10 मिनट
विश्व के ग्लोब,
विश्व के गोले पर एक ही अभ्यास करेंगे। दूसरा, कुछ समय चलते फिरते या खड़े होकर या धरती पर बैठकर भी पैरों से, अपने शरीर से, ऐसे ही राजयोग का अभ्यास करके मेरे पैरों से पवित्र किरणें धरती में समा रही हैं, ये अभ्यास करेंगे तो ये पवित्र एनर्जी इस धरती को, इस प्रकृति को पुनः भरपूर करेगी। ये हम सबका बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य है।
बहुत सुंदर बात भ्राता जी, मुझे लगता है कि इस बात पर किसी का ध्यान नहीं होगा, यूएन का भी ध्यान नहीं होगा तो भारत में भी किसी का ध्यान नहीं होगा, लेकिन सचमुच ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने वाइब्रेशन से भी अपनी वसुधा माँ की और प्रकृति की इस प्रकार सेवा कर सकते हैं। भ्राता जी, विशेष करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शरीर विश्वविद्यालय पूरे विश्व में व्याप्त है, क्या विद्यालय की तरफ से, ये तो रही बहुत सुंदर वाइब्रेशन और योग की बात, क्या स्थूल रूप से भी प्रकृति को सुरक्षित करने के लिए या पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है?
बहुत अच्छे चलाए जाते हैं। जैसा बहुतों को मालूम है कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 18 विंग्स हैं, उसमें से एक इंजीनियर एंड साइंटिस्ट है, दूसरा ग्राम विकास का एक विंग है। तो इंजीनियर एंड साइंटिस्ट वाले लोग, हमारे जो इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं, वो अभियान निकालते ही रहते हैं। अब तक बहुत सारे अभियान निकाले जा चुके हैं पर्यावरण की अवेयरनेस लोगों को देने के लिए कि इसे हमें कैसे शुद्ध रखना है और जो इसमें ये प्रदूषण आ गया है पर्यावरण में, इससे कैसे बचाना है और स्वयं को बचाना है। बल्कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय को राजस्थान की ओर से, जयपुर की ओर से इसके लिए अवार्ड भी बहुत श्रेष्ठ मिला है। हमारे यहाँ जब लोग, हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है ऊपर माउंट आबू में, पर्यावरण वाले लोग हमें सिखाने के लिए कुछ आते हैं और जब वो वहां आते हैं तो ये कहते हैं, हम आपको क्या सिखाएंगे, हम तो यहाँ सीखने आ गए हैं, वहां इतना सुंदर ग्रीनरी और ये सब अच्छा किया गया है। तो उसको देखकर उन्हें लगता है हमसे अधिक जानकारी तो इनके पास है। तो हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे ये कार्य कर रहे हैं। दूसरा सोलर प्रोजेक्ट जो बहुत अच्छा हम लोगों के यहाँ जहां तहां चला है, हमारे सभी सेंटर्स में हमारे यहाँ आने वाले लोगों ने अपने घरों की छत पर उसको इंस्टॉल कराया है और हमारे कई लोग इस कार्य में लगे रहते हैं। जहां से भी मांग आती है उसको वो लगा के आते हैं और उसकी देखरेख भी करते हैं, बाद में भी उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी कोई कठिनाई आई, कोई चीज खराब हो गई, वो फोन करते हैं, ये लोग जाकर वहां करते हैं। हमारे यहाँ शांतिवन के पास ही आबू रोड में बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है सोलर के द्वारा बिजली उत्पादन का, और ये विश्व में पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो बहुत जल्दी तैयार होने जा रहा है। इसे बहुत सारी बिजली का उत्पादन होगा और बहुत कार्य इसके द्वारा चलेंगे। इसके अलावा हमारे आश्रम में कई सारे वाहन सोलर एनर्जी से चलाए जा रहे हैं और भविष्य में बहुत सारे वाहन ऐसे मंगाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से भी हमें इसमें मदद मिल रही है। तो हम लोग ये कार्य भी बहुत करते हैं ताकि प्रदूषण न हो, और इसमें हमारा बहुत ज्यादा ध्यान है क्योंकि प्रदूषण से बीमारियां बढ़ रही हैं, संसार को खतरा पैदा हो गया है इस एक कारण से, टेम्परेचर ही बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी भी कोई बड़ी घटना दुर्घटना यहाँ हो सकती है। तीसरी चीज जो मैंने कहा, हमारे यहाँ ग्राम विकास प्रभाग भी है और विशेषकर किसानों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं, उसके लिए हमारे अच्छे अच्छे अभियान निकाले जाते हैं, गांव गांव में किसानों को ट्रेंड किया जाता है जाकर, और उसमें चल रहा है विशेष रूप से यौगिक खेती, ताकि जो फसल पैदा होती है उसमें ये केमिकल्स और विशेष जो खाद आजकल चल रहे हैं इनका प्रयोग न करके योग के अभ्यास से उसको बहुत अच्छा प्रोडक्शन लिया जाए, और इसमें बहुत सफलता हो रही है। तो ये भी बहुत अच्छा,
क्योंकि केमिकल का यूज जितना किया जाता है यूरिया आदि का, वो न केवल शरीर के लिए घातक है बल्कि धरती के लिए भी बहुत,
धरती के लिए बहुत घातक है। जैसे ऐसा कह दें हम धरती में हम जहर डाल रहे हैं, डालना चाहिए हमें अमृत, डालना चाहिए हमें प्योरिटी, डाला जा रहा है जहर, उसका नुकसान कहीं ना कहीं फिर से रिवर्स होकर मनुष्य को आता है, धरती के अंदर न जाने क्या क्या परिवर्तन वो लाता है जिसको कोई समझ नहीं सकता, कोई उस पर रिसर्च नहीं कर रहा है। और इन सब से मुझे जो कुछ दिख रहा है भविष्य के लिए, वो मैं अपने सभी लोगों को, दर्शकों को, इन्हीं सारे संसार को इसके लिए अवेयर करना चाहता हूं कि अगर ये चीजें बढ़ती रही तो धरती में विस्फोट हो जाएगा, और ये विस्फोट बहुत खतरनाक होगा। इसको रोकना किसी के बस की बात नहीं रहेगी, क्योंकि आखिर धरती भी तो अपने किसी नियमों के आधार से कार्यरत है ना, प्रकृति की हर चीज में कुछ सिद्धांत काम कर रहे हैं। अगर उन सिद्धांतों को ब्रेक किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम मनुष्य को भुगतने पड़ते।
तो ये जो अभी यौगिक खेती की आपने बात कही कि हम रसायन यूज नहीं करते हैं, तो क्या जो उत्पादन है यौगिक खेती के माध्यम से वो उत्पादन समान है ज्यादा है, कम है, किस प्रकार?
बहुत बढ़ गया है वो, बहुत ही बढ़ गया है। ये जहां तहां प्रयोग जो किए हैं ये एक रिसर्च के रूप में हो गया है, प्रोडक्शन भी बढ़ गया है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ गई है और इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत सुंदर हैं। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना देना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारा प्रभाग नहीं था तब मैं छोटे छोटे प्रयोग लोगों से कराया करता था। कोल्हापुर के किसानों ने, एक किसान ने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया था। चावल वहां उगाए जाते हैं तो पहले उसके जितने भी खेत में वो अपने चावल धान बोते थे, चावल पैदा होते थे 13 टन हर साल, लगभग इतना चलता था। उन्होंने इस बार क्या किया था कि एक ग्रुप जाता था और योग के वाइब्रेशंस खेती को देता था, चावल की जो खेती है धान की, और डेली सवेरे शाम ये लोग 15-15 मिनट जाकर ये कार्य करते थे। परिणाम इतना सुंदर हुआ, उसी उतनी खेती में वही सब कुछ किए हुए, खाद की तो ज्यादा जरूरत नहीं रही, पानी तो चावल को बहुत देना पड़ता है, चावल हुए 25 टन, लगभग डबल। तुरंत वो सब मुझे सुनाने आई है समाचार, ये बिल्कुल सत्य घटना है। वो लोग अभी हैं वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे पूछा जा सकता है। ऐसे ही एक जामुन के पेड़ पर बहुत सुंदर प्रयोग हुआ था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। हम अपने स्पार्क की ओर से ये कराया करते थे, तब भी ये ग्राम विकास का जो प्रभाग है ये नहीं था। तो एक किसान ने, उसके घर में एक जामुन का पेड़ है, उसने क्या किया, रोज जामुन के पेड़ को दोनों हाथों से टच करके 15 मिनट उसे प्योर वाइब्रेशंस दिए। और उसका सिंपल तरीका, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, शिव बाबा से प्योर वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं और आत्मा से पहुंच रहे हैं हाथों के माध्यम से पेड़ को। वो ये काम रोज करता था 15 मिनट। जामुन आनी शुरू हुई, उसने सभा में ये अनुभव सुनाया था, कोई बात छुपी हुई नहीं है, सभा में सुनाया कि मेरे पेड़ पर जामुन चली 6 मास, नहीं आती रही, पक्के खाते रहे। सारे गांव में हमने जामुन बांटी, जामुन इतनी मीठी थी कि लोग ये कहते थे गुड़ का पानी डाला क्या, बहुत सारा आपने इसमें, साइज भी बड़ा हो गया था। हमें भी ये अनुभव सुन के बहुत आनंद हुआ। तो वास्तव में हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को बहुत खुश,
वास्तव में इसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है ब्रता जी। एक तो हम जो चीजें यूज कर रहे हैं प्रकृति में भी प्रदूषण फैला रहे हैं, लेकिन ये जो वाइब्रेशन के माध्यम से, चाहे वो खेती हो चाहे अन्य चीजें हो, उन्हें बहुत श्रेष्ठ किया जा सकता है। ब्रता जी, एक और प्रोजेक्ट के बारे में मैंने सुना था जो ब्रह्मा कुमारीज रन कर रही हैं, क्लीन द माइंड ग्रीन द अर्थ, इसके विषय में भी संक्षिप्त में जानना चाहूंगा।
बहुत अच्छा ये है कि पहले तो हमें माइंड को क्लीन करना है
जी, वो मानसिक प्रदूषण की बात आप कर रहे हैं,
क्योंकि अगर माइंड क्लीन नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है
जी।
अगर बाह्य सुख साधन बढ़ भी जाए और मनुष्य मन से दुखी हो तो भी उसको आनंद नहीं आता है। लेकिन ग्रीन द अर्थ, धरती पर बहुत सारे पेड़ लगाए जाएं, उगाए जाएं, तो हमारे लोग बहुत सारा इस पर भी एक अभियान चलाते रहते हैं, जहां तहां गांव-गांव में जाकर, सिटीज में जाकर, भिन्न भिन्न जगह पर, कि अपने घरों में, अपने खेतों में, किसी के पास स्कूल है तो वहां जहां जहां मौका मिले पेड़ लगाओ, उनको बढ़ाओ, उनकी पालना करो, संरक्षण करो और इस तरह से इस धरती को ग्रीनरी से भरपूर करो। क्योंकि धरती जब ग्रीन होती है तो मनुष्य के मन पर उसका बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, मन भी ग्रीन होने लगता है। तो बहुत जरूरी है जी, ये प्रोजेक्ट भी हमारा बहुत अच्छा चलता है।
तो ब्रता जी, आज के अंत में मैं ये जानना चाहूंगा, आज विश्व वसुधा दिवस बहुत ही सुंदर सुखद दिवस है, पूरे विश्व समुदाय को ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से विशेष क्या संदेश देंगे?
मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा अपने इस महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कि अब ऐसा संसार आ रहा है जिसमें ये धरा संपूर्ण रूप से भरपूर होगी, ग्रीनरी से भरपूर होगी, हीरे मोतियों से भरपूर होगी, अन्न से भी भरपूर होगी। इस पर कदम रखने वाले लोग देवता होंगे, देवताओं के चरण छुएगी ये धरती, चरण पड़ेंगे इस धरती पर, तो ये धरती महान बनने वाली है। और उसके लिए हम राजयोग के द्वारा बहुत बड़ा ये कार्य कर रहे हैं। मेरी सभी को यही कहना है कि सभी अपनी इस धरती माँ को सुरक्षा प्रदान करें, इसको स्वच्छ करें, इसमें प्योर वाइब्रेशंस भेजें, जल को भी दूषित न करें, अपने विचारों को भी शुद्ध करें। हम धरती के पुत्र हैं, धरती माँ हमें देखकर आनंदित हो, वाह मेरे पुत्र, वाह मेरे बच्चों, वाह। तो इस पर जो पाप का बोझ आ गया है, इस पर जो अनैतिकता का बोझ आ गया है, उससे हम इस धरती को मुक्त करें। प्रदूषण से तो मुक्त करना ही है, लेकिन पाप के बोझ से भी सभी इस धरती को मुक्त करें। हर मनुष्य, इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी, स्वामी आज के इस दिवस पर संकल्प करे, मुझे अपने जीवन में रोज एक श्रेष्ठ कर्म अवश्य करना है। हमारे श्रेष्ठ कर्म को देखकर हमारी धरती माँ प्रफुल्लित हो उठेगी और फिर से उसमें नई ऊर्जा का आविर्भाव हो जाएगा, ये धरा भरपूर हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत सुंदर पंक्तियां हमारी भारती बहन ने धारी से भेजा है, धारी गुजरात से। वो पंक्तियां मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को अर्पित करना चाहूंगा। धरती दिवस पे विशेष उन्होंने ये कविता भेजी है। वो कहती है कि धरती हमारी माता है, माता को प्रणाम करो, बनी रहे इसकी सुंदरता, ऐसा भी कुछ काम करो। जैसे आप पुण्य कर्मों की बात कह रहे थे, बनी रहे इसकी सुंदरता, ऐसा भी कुछ काम करो। आओ हम सब मिलजुल कर इस धरती को ही स्वर्ग बना दें, देकर सुंदर रूप धरा को, कुरूपता को दूर भगा दें। नैतिक जिम्मेदारी समझकर नैतिकता से काम करें, गंदगी फैला भूमि पर माँ को ना बदनाम करें। माँ तो है हम सबकी रक्षक, हम इसके क्यों बन रहे भक्षक। जन्म भूमि है पावन भूमि, बन जाए इनके संरक्षक। कुदरत ने जो दिया धरा को, उसका सब सम्मान करो। ना छेड़ो इन उपहारों को, ना कोई बुराई भरा काम करो। धरती हमारी माता है, माता को प्रणाम करो, बनी रहे इसकी सुंदरता, ऐसा भी कुछ काम करो। ये पंक्तियां भारती जी ने हमें भेजी हैं भ्राता जी, गुजरात से। आज की और सुंदर तमाम चर्चाओं के लिए और बहुत सुंदर प्रेरणा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष आज विश्व वसुधा दिवस है और भ्राता जी ने बहुत सारी नई नई बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं। यद्यपि बड़े बड़े कार्य हैं करने के लिए, वायु में प्रदूषण फैल रहा है, जल में प्रदूषण फैल रहा है, धरा को पेड़ आदि काटे जा रहे हैं, बहुत सारा कार्य करना है, लेकिन एक विशेष कार्य जो भ्राता जी कह रहे हैं, जो हम व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं, वो ये कि हम धरा को वाइब्रेशन दें। अपने शुभ और पवित्र वाइब्रेशन यदि हम देंगे तो धरती पुनः उपजाऊ हो जाएगी। प्रकृति का जो ऋण है, धरा का जो ऋण है, उस ऋण को भी हमें अवश्य चुकाना है। राजयोग के माध्यम से, पवित्र वाइब्रेशन के माध्यम से आए हम सब मिलकर इस धरा को स्वर्ग बनाएं। इस विश्व वसुधा दिवस पे यही एक संकल्प हम सबको लेना है कि इसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं, स्वर्ग बनाएं, तभी वास्तव में हम सब अपनी प्रकृति और वसुधा माँ के ऋण से मुक्त हो सकेंगे। नमस्कार।